रखे। अरे सखा कैसा होना चाहिए? सखा होना चाहिए अर्जुन की भाव, क्योंकि ये जो भक्ति है वैदिक भक्ति है, इसलिए जहाँ पर ऐश्वर्य परक होगा ऐसे दासों की बात आएगी। यहाँ पर सिद्धाम सुबल की बात नहीं लिखी गई। यदि सख्य हो तो सिद्धाम और सुबल के समान, वैसा अर्जुन के लिए संभव पर नहीं, किंतु वैदिक भक्ति का उल्लेख यहाँ हो रहा है, इसलिए ऐश्वर्य परक जो जितने हैं ये सब उनका नाम दिया गया। माधुर्य पर किसी भी भक्त का उल्लेख नहीं, इसीलिए नहीं दिया गया। तो इसके लिए सखे ऐसे सखा हैं जो अपनी प्यारी बहन को भी यदि शादी देना है तो किसको दिया? अपना भक्त, अपने से निम्न कोटि का सब प्रकार से, और अपनी प्यारी बहन को अपने सखा को दिया। कोई नीति की बात आने पर भी कृष्ण ने नीति की भी उपेक्षा करके अर्जुन का साथ दिया। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण को निमंत्रण करने गए। दुर्योधन पहले गया था और कृष्ण को लेने का हक भी उसी का हो गया, किंतु कृष्ण बड़े चतुर और छली नहीं है, भक्तों के साथ में छल नहीं, दूसरों के साथ में छल भी कर देते हैं, क्योंकि वो भी छल करने के लिए आए हैं, ठीक ठाक पैर भी
पैसा।
इसलिए वो गया था कृष्ण को स्वार्थ से अपने तरफ में लेने, और अर्जुन का कोई स्वार्थ नहीं था, कृष्ण की सेवा करने के लिए था, इसलिए उन्होंने बहाना बनाया। अच्छा तू ले ले, मान लो ये क्या चाहता है। उन्होंने कहा जे आप हमारी तरफ से जिंदगी, कृष्ण ने कहा मैं युद्ध तो करूंगा नहीं, एक तरफ मैं निरस्त्र रहूंगा निहत्था, और एक तरफ में हमारी समस्त सेनाएं, तो कितनी अक्षौणी यादवों की सेनाएं रहेंगी, उनको ले सकता है दोनों में से, आपके ऊपर में निर्भर। तो उन्होंने कहा कि मैं, आप जब लड़ेंगे ही नहीं तो आपको लेकर के क्या करेंगे, मैं उनको, तो उनको लेकर के भेज दिया। अर्जुन बोलिए प्रभु यदि आप यदि उसके तरफ में हो जाते तो मैं यहीं पर प्राण प्रत्याग करता। कैसे सखा, एक पलंग पर सोए हैं तो उनका कृष्ण का पैर अर्जुन की तरफ में, अर्जुन अपने सिर पर रखे हैं या अपने गोदी में धारण, और अर्जुन का पैर स्वयं अपनी छाती में धारण किए, अर्जुन के पैर को सप्रभामा इत्यादि सब चमर दुला रहे हैं और क्या क्या सेवा कर रहे हैं, कृष्ण से अभिन्न नहीं है, और कृष्ण के चरणों को द्रौपदी और सुभद्रा ऐसे ये प्रिय सब कृष्ण के लिए उनका रथ चला, क्या नहीं किया। ऐसे यदि सखा हो तो ये वैदिक भक्ति के लिए, और माधुर्य के लिए मधुमंगल जी हैं, सीताम जी हैं, सबसे अधिक सुबल जी हैं, अर्जुन जी हैं, लवंग हैं, गोपियां भी सखा सबसे अधिक। तो सखे अर्जुन सर्वस्व आत्मनिवेदने बदीर आभूत, और बलि महाराज ने सर्वस्व उनके चरण में। हम लोगों का ये देना होता है ना सर्वस्व आत्मनिवेदन गुरु के चरणों में या भगवान के चरणों में, हम लोग ये वहां पर बताया देह मन और आत्मा तीन से संबंधित है। उन्होंने तो सब कुछ दे क्या सर्वस्व आत्मनिवेदन सर्वस्व दे दिया, किंतु हम लोग शरीर भी दे दे तो भी काम, शरीर के साथ साथ में मन को दे दे तो और भी अच्छा, और उसके साथ साथ में अपना मन अपना सर्वस्व कुछ ये जगत में कहा जाने वाला। इधर देखो भाई, अरे इधर सी इधर इधर देखो कौन इधर देखो उधर देखने की जरूरत। तो सर्वस्व आत्म निवेदन करने की चेष्टा करनी चाहिए। बलि महाराज, बलि महाराज सब कुछ देना नहीं चाहते थे, किंतु कृष्ण लेना चाहते थे। कुछ कुछ उनकी इच्छा भी थी, नहीं तो उनके लिए ऐसा नहीं कर, दूसरों का क्यों नहीं, रावण का ऐसा क्यों नहीं किया। वो जानते थे जैसे ये प्रहलाद महाराज जी का वंशज है, इसलिए इस पर करुणा करनी है, उसका लेना है, उसके लिए अनर्थ है। वो उनको इंद्र से भी अधिक प्यारे हैं। इंद्र में और बलि महाराज में उन्होंने किसको अधिक स्नेह किया? बलि महाराज। किंतु साधारण आदमी अपातता नहीं समझता है, इसलिए उनका पहले तीन पग भूमि मांग करके और उसी के बहाने से पहले तो उनका सब कुछ जो कुछ था बाहरी वो सब लिया। अच्छा, उनका समस्त राज्य ले लिया है, तीन पग में ऊपर से नीचे तक सब कुछ राज्य ले लिया। तो उनका धन लिया होगा कि नहीं? राज्य से क्या बोध होता है? वो हरिश्चंद्र जैसा, हरिश्चंद्र से उन्नत है ये। हरिश्चंद्र ने कहा कि भाई राज्य तो दिया है, खजाना तो आपको दिया नहीं। अरे बेखू, राज्य दे दिया तो फिर राज्य का रहा कहा तुम्हारे पास में? हमारे राज्य में अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्होंने दिया। केवल अब तीन चीज को छोड़ देते, तुम भी हमारे हो गए हो, किंतु तुम्हारे अभी अकल में नहीं आ रही, तुम, तुम्हारा पुत्र और तुम्हारी भाग्य। अब तुम हमारे राज्य से निकल करके कहीं दूसरी जगह जाओ। कोई दूसरी जगह था ही नहीं, तो हम तुम्हें काशी में भेज दिया, कहा जब बेच दो, तो बेचवाया, तभी अपनी बुद्धि आ रही, तभी मैं राजा था, मैं बेची गई ही सभ्या का मैं पति हूं और रोहिताश्व का मैं पिता हूं, अभी भाव नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं जाता, खत्म कर दिया, मार दिया, सांप ने काट लिया। अब जो मरा हुआ लड़का है उसमें भी मेरा रोहिताश्व मर गया है ये भाव गया। कभी अंत में उनको भगवान आए, उनको दर्शन दिया, उनको तत्व का बोध हुआ, तब इस चीज को समझे। बलि महाराज जी के लिए राज्य ले लिया। उन्होंने ये नहीं कहा ये हमारा खजाना खजाना अब ये मेरा, सब कुछ दे दिया, वो सब देह नहीं लिया है, अब देह को लेना है, राज्य और जो अपना कहा जाने वाला था सब कुछ ले लिया, अब बाकी क्या रह गया? अपना शरीर, उसको भी माफ लिया, पैर से और यहां तक में ऐसे पैर बढ़ा करके उनको उन्होंने उसको दे दिया, अपने शरीर को, मन को, सब कुछ को दे दिया। अब उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं रही। भगवान ने कहा कि अच्छा अब जैसा मैं कहता हूं वही तो करेगा, तो हाँ करेंगे, क्योंकि आपका हो गया। उन्होंने कहा अच्छा पाताल लोक में तुम जाओ, वो तुम्हारे लिए रसातल में क्या सुतल में तुम जाओ, तुम्हारे लिए वहीं पर हम नियुक्ति, अब तुम हमारा बन करके रहना, अब तुम अपना नहीं है। वहां जाकर के क्या करेंगे? प्रहलाद महाराज जी को भेज दिया, जाइए इसको रहना सिखलाइए, ये अपने जन भगवान का भक्त कैसे रहता है इसको सिखलाइए, और देखेंगे बात करेंगे ये ठीक है कि नहीं, ऐसे भगवान की करुणा। इसलिए अपना शरीर, मन, तन सब कुछ अर्पण करना चाहिए। हम क्या करते हैं, गुरु जी से दीक्षा ली, तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले तार करे आत्मसम, से ही देह तार करे चिदानंदमय, से ही देह से कृष्ण चर, अप्राकृत देह से ही कृष्ण चर, आत्मसमर्पण करता है। किंतु हम लोग ऐसे दुर्भागा हैं कि अपनी मन की वृत्तियों को भी नहीं दे सकते, हम अपने ढंग से सोचते हैं, स्वतंत्र होते हैं, हमको कहाँ जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, अपने ढंग से सोचते हैं। महाराज जी हम नवदीप परिक्रमा जाएंगे, जो आत्मसमर्पित व्यक्ति है उसको जाने की कोई भावना हृदय में रहेगी कि नहीं। जब उनके ऊपर में छोड़ दिया, इसलिए हम लोगों ने जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ जो उनसे कहा हो कि हम वहां जाएंगे ये करेंगे। ये समर्पित व्यक्तियों का, वो कहेंगे कि यहाँ पर ऐसी सेवा की जरूरत है, वहां पर जाना है बस। हाँ, जब उनको सब कुछ दे दिया तो अब हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ये सब रहेगा कि नहीं? यदि रहा ही तो आत्मसमर्पण ही एकदम पहले ही शरीर का ही नहीं हुआ तो आत्मा की तो बात दूर रहे। इसलिए ये सब पर अच्छी तरह से विचार करो। ये सब को देने का नाम आत्मसमर्पण है। शरीर शरीर संबंधी मन संबंधी जो कुछ है अब हमारा उस पर अधिकार नहीं। ठाकुर जी जो कुछ हमको भोजन के लिए प्रसाद दे दिया बस वही, और चीज में तुम्हें लोभ करने का ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं। यदि है तो तुम्हारा आत्मसमर्पण। ऐसा ही हम लोगों को आत्मसमर्पण समझो। महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, हम जरा वहां से घूम। गुरु जी ने नहीं कहा जैसे तुमको वहां जाना है मेरी सेवा के लिए, ये नहीं कहा। अपने मतलब से अपने मन से अपनी स्वाधीनता से अपना जो सुखकर और रुचिकर है वो हम करते हैं तो इसमें आत्मसमर्पण का। यदि ऐसा व्यक्ति हो जाएगा तो फिर वो दूसरी तरफ में कहीं उसको नजर बात विवाद संवाद कहीं। इसलिए सब गड़बड़ियां होती है। अनर्थग्रस्त जीव को अपनी कुछ स्वतंत्रता है उसका व्यवहार करता है और इसीलिए लड़ाई झगड़ा विवाद फसाद ये सब काम को लो मत। इस श्रवण को श्रवण कहते हैं, इसमें ताल नहीं है स्वर नहीं है किंतु फिर भी ये कीर्तन है और इसी का सुनना ही सुनना है श्रवण। यदि सुन करके हमारे अंदर में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है और वैसा भाव नहीं आता है तो यह सब सुनना ये बेकार का है, बेकार। इसलिए ऐसा ग्रहण करने की चेष्टा करनी, तब तो आत्मसमर्पण होगा। इसलिए इतना सहज नहीं है। गुरुजी हैं और हम दोनों मार पीट करके, गुरुजी हमारा विचार नहीं करेंगे तो हम मठ में ही नहीं रहेंगे, मतर हो जाओ। वो तो है ही नहीं है मठ में। इसलिए ऐसा विचार करके चलना चाहिए। जो भजन करने वाला आप लोग भी मठ में नहीं है, उनसे मठ में ही है। आप लोग भी इस प्रकार से भगवत समर्पण करके भजन करो, फिर कोई भी चिंता की बात नहीं। दुख दूरे गेलो चिंता ना रहियो, चौदह के आनंद आनंद। और ऐसा भाव नहीं होगा। इसलिए बलि महाराज ने सर्वस्वात्म निवेदने बलि आभूत सब इसको कर। बलि महाराज जी वहां पर पहुंच करके उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मुझे बड़ा खेद है कि मुझे स्वर्ग नहीं मिला, कहीं है। इसलिए भगवान की इच्छा के विपरीत उन्होंने कुछ भी कहीं करने का उल्लेख नहीं है। भगवान ने जैसा कहा यह है। तो पहले शरीर से हो, मन से हो, कर्म से हो और फिर आत्मा के द्वारा, ऐसा नहीं तब ये दीक्षा हुई। अन्यथा दीक्षा ले लिया हाथ में वो जो बेल की लकड़ी होती है लेकर के उसी से ही झगड़ा करने लगे, ये दीक्षा का। दीक्षा लिया नहीं जाता है, दीक्षा दिया जाता है। गुरु उसको दीक्षा देते हैं, उसे ग्रहण करना, उसको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए ऐसा होना चाहिए। यहां पर इति पुंसार्थिता, इस शब्द का तात्पर्य क्या है? पम पुरुष, पुरुष शब्द से द्वारका में जितनी भी रुक्मिणी इत्यादि रानियां थी कृष्ण की बड़ी प्यारी थी। रुक्मिणी का क्या अर्थ है? जितनी भी महर्षियां आई सब उसमें आई। जादव लोग कृष्ण के बड़े प्यारे थे। जादव माने यहां पर पुंसम माने जीव मात्र, इति पुंसम जितने जीव मात्र हैं जगत में सबके लिए ये कर्तव्य है, ऐसा युग मात्र है। क्या विष्णु अर्पिता भक्ति चेत, चेत माने यदि क्या हो भगवान के प्रति साक्षात अर्पिता हो, अर्था अर्था भगवती अर्था भगवान के प्रति साक्षात रूप से निवेदित हो। माने क्या कर्म हम करते हैं किस लिए, यज्ञ हम किस लिए, महाराज युधिष्ठिर ने दशरथ जी ने यज्ञ किया किस लिए किया,
पुत्र
और लोग जो यज्ञ करते हैं वो किस लिए करते हैं, महाराज सगर ने यज्ञ किया अश्वमेध स्वर्ग इत्यादि के लिए, किंतु यज्ञेश्वर कौन है, इसलिए यज्ञेश्वर की पूजा की किंतु अपने सुख के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, अपना सुख मूल है किंतु बिना भगवान को प्रसन्न किए वो फल नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बीच में एक दीवार आ गई,
अरब सिद्ध हो गया,
दीवार आ गई, अरब सिद्धा भी नहीं, ये कुछ नहीं, ये सीधा शुद्धि कर्म है, एकदम पक्का कर्म है, कच्चा नहीं। तो ये ज्ञान भी मुक्ति से होता है, किंतु हरिनाम इत्यादि माध्यम करते हैं कि हरिनाम करने से, श्रवण करने से, भागवत का पाठ करने से चित्त निर्मल हो जाएगा और उनकी कृपा से सहज ही मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए ज्ञान भी कर्म ज्ञान जो तपस्या व्रत होम स्वाध्याय जो कुछ हैं ये सब क्या है, बीच में कुछ बाधाएं डायरेक्ट भगवान की नहीं है, डायरेक्ट कब होगा अर्पित, जब उनके सुख के लिए ही उसको करते हैं। एक हमने फल लिया बाजार से, बहुत ही सुंदर फल है, ले करके आए, अपने पैसे देकर ये मेरा फल है, अब इसको भगवान को देने से प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, मेरी सिद्धि हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, भक्ति नहीं। यदि हम इस रूप में लेते, भगवान के यहाँ ही सब कुछ है, मैं भी भगवान का हूं और भगवान की प्रसन्नता के लिए मधुर फल खा करके प्रभु को प्रसन्नता, उसमें अपने लिए कुछ भी नहीं रहा उनके लिए, तब ये डायरेक्ट भक्ति हो। इसलिए अर्पिता साक्षात भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, ये नौ प्रकार की भक्ति करते हैं डायरेक्ट भगवान को प्रसन्न करने। अच्छा प्रसन्न करना किस लिए चाहते हो, इसलिए कि वो प्रसन्न रहे, तो वो फिर प्रसन्न किस लिए, वही प्रसन्न हो, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, बस एक ही बात, हजार बार पूछे किस लिए ये करना चाहते हो, भजन किस लिए करता है, प्रभु को प्रसन्न, तो प्रभु प्रसन्न होकर के तुमको क्या देंगे, यही देंगे कि वो प्रसन्न हो जाएंगे, बस बस और कुछ नहीं। इसको कहते हैं डायरेक्ट भक्ति, आ रहा समझ में, इसको कहते हैं
स्वरूप सिद्धा,
ये सब स्वरूप सिद्धा, इसलिए कहते हैं जीव मात्र के लिए और बिना बाधा के डायरेक्ट ये भगवान के प्रति कोई भी चीज हो अर्चन करते हैं किस लिए, नहीं करने से यहाँ खाने के लिए नहीं देंगे, कोई काम तो करना है, नहीं तो देंगे थोड़े, कोई ना कुछ करना पड़ेगा, तो देखें जैसे सबसे सहज क्या है, तो उन्होंने देखा जैसे यहाँ पर रसोई करना एक तरह से अच्छा है, कोई झंझट नहीं है, झंझट नहीं इसलिए रसोई करेंगे और अच्छा अच्छा जो होगा, कभी अपने लिए आलू भी खा लिया, कभी बैंगन भी रख लिया और परमान में जब भोग लगेगा थोड़ा सा वो भी रख लिया, उसमें सुविधा है, किंतु देखा जी ये तो मसाला भी बंटवाते हैं
इस बात पे
और सभी काम कराते हैं बाजार से जाकर के सभी, ना भाई ये ठीक नहीं, अर्चन ठीक है हमारे लिए, अर्चन में कोई झंझट नहीं है, तो दो दिन अर्चन किया तो दिखा भाई ये तो सवेरे 3 बजे उठना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, इसमें बड़ा झंझट, कहा प्रभु हमसे नहीं, हम तो केवल कीर्तन कर देंगे बस, ऐसे सब में ये सब डायरेक्ट भक्ति नहीं है, खूब समझो अच्छी तरह से, ये कोई भी भक्ति नहीं है। किंतु एक वैष्णव वैष्णव की चट्टी फेंकता है, ये सबसे उत्तम भागवत पाठ से भी अधिक उन्नत हो सकता है, यदि वैसे नरोत्तम ठाकुर जैसे अथवा लोकनाथ घास गोस्वामी के प्रति जैसे वैसे अपने गुरु के प्रति जैसे ईश्वर पूरी बात ने किया, वो उनकी रसमयी भक्ति है, ऐसे समझना चाहिए भाई, और नहीं तो कोई भक्ति नहीं, साक्षात भक्ति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं अध्या माने साक्षात न तो ज्ञान वैराग्य कर्म आदि वत व्यवधान व्यवधान के साथ में बाधाओं के साथ में बीच में एक रख दिया और बाधा और कर्म, ऐसे नहीं। हम लोग अभी काम क्रोध लोभ मद मोह अपना स्वार्थ और सब चीजें बीच में रख करके भगवान की सब कुछ करते हैं, यदि ये सब हट जाए और साक्षात रूप भगवान के लिए होने लग जाए भाई, तब फिर वैसे ही चिंता न रही बस, तब दिव्य आनंद देगी, तब वो शुद्धा भक्ति होगी। साचा अर्पिता एव सती, यदि अर्पिता डायरेक्ट भगवान के अपने को ही अर्पण कर दो, अपना सर्वस्व अर्पण करके कोई भी काम करेगा ना, पहले अपने लिए अपने को अर्पण कर दो, अपना सर्वस्व अर्पण कर दो भगवान, अब मेरा कुछ है ही नहीं, क्या है जो कुछ हमारा है, मानस देह गेह जे किछु मोर अर्पित, ये कहना तो सहज है किंतु करना बड़ा भारी कर, तो कर लिया हो जाएगा तो बड़ा सहज हो जाएगा, सब प्रभु को समर्पण करके भाई ऐसा, और नहीं तो करके आप फिर उसको अर्पण करेंगे तो भक्ति नहीं, वो क्या हो जाएगा, आरोप सिद्धा भक्ति हो जाएगा। ऐसा अर्चन करके अर्चन का फल ठाकुर, भागवत पाठ करके सात दिन का सप्ताह करके भगवान को उसको फल दे दिया, ये हमारे कर्मों की सिद्धि हो जाए, ये सब भक्ति नहीं। कीर्तन कराया, अखंड कीर्तन कराया 15 दिन का, और उसका लेकर के भगवान को समर्पण कर दिया, इसलिए हमारा अशुभ दूर हो जाए, हमारा ये मनोकामना, ये सब भक्ति नहीं। संसार के लोग इन चीजों को नहीं समझते, हम लोगों को भी वो अपने कर्मों में उछल्ले बांध करके लगाना चाहते, हम लोग वही कर, वो लोग हमारे भक्ति को भी अपने कर्म का अंग बनाना चाहते,
अधीन बनाना
चाहते, अधीन, हम लोग के भक्ति का अधीन अपना कर्म नहीं करना चाहते, तब तक उनकी भक्ति हो जाती, ऐसा करेंगे नहीं। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा अन्य अभिलाष यदि भक्ति में रहे तो भक्ति शुद्धा नहीं होगी, साक्षात अर्पित नहीं होगी, इसलिए समस्त प्रकार की अन्य अभिलाषिता ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि को दूर करके तब भगवान का ये 9 प्रकार का जो बतलाया अच्छी तरह से विचार करके करना। और भी बड़ी सुंदर सुंदर बातें इसमें लिखी गई है, कीर्तन शब्द से श्रवण शब्द से, यहां ये प्रभुपाद जी इसका तथ्य लिख रहे हैं, इन्हें प्रभुपाद की भाषा में उनके शब्दों को सुनो और वैसे ही करने की चेष्टा करो भाई। यहां श्रवण शब्द से कृष्ण का नाम रूप गुण परिकर और उनके लीलाओं का करने के साथ में पूर्वक स्पर्श हो तो उसको कहेंगे श्रम, इन सब चीजों का, और वो भी जैसे कि परीक्षित महाराज ने जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी की कथाएं सुनी थी ऐसे प्रति के सहित हो तो श्रम, और ऐसे महापुरुषों के साथ में उन्हीं से उसी प्रकार से कीर्तन, उसी प्रकार से स्मरण, पहले नाम फिर नाम के साथ साथ में कीर्तन करते या स्मरण करते समय या श्रवण करते समय सुनते सुनते नाम फिर उनकी रूप कृष्ण का रूप, फिर उनका गुण क्या क्या है, फिर उनकी लीलाएं और फिर उनके परिकर के साथ में लीलाएं, ये सब सुनने का नाम क्रमशः है। वैसे ही कीर्तन इन सब का, और वैसे ही इनका श्रवण, ये तीनों के संबंध में ऐसा समय नहीं, क्रम विकास है। फकीरनाथ ठाकुर ने कीर्तन में लिखा है ये भगवान का नाम प्रेम की कलिका है,
प्रेमेर कली का नाम अद्भुत प्रेमेर
कली, जैसे की होती है ना अनार की कली या किसी गुलाब की कमल की कली, कमल कली में कोई सुगंध नहीं होता और बड़ी कठोर होती है, कोमल नहीं होती, उसमें पराग इत्यादि भी कुछ नहीं दिखता, धीरे 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 वो कली थोड़ी सी फूलने लगी, जितने ही फूलने लगी उसमें सुगंध माधुर्य कोमलता पराग इत्यादि सभी कुछ उसमें प्रकाशित, वही क्रमशः धीरे धीरे अर्ध विकसित होगी, फिर इसके बाद में पूर्ण विकसित होगी और पूर्णतम रूप में विकसित होगी। वैसे ही नाम, पहले नाम फिर रूप उसके साथ में, फिर पहले नाम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर हम क्या सुनेंगे जे कृष्ण ये हैं बांसुरी बजाते हैं, श्याम रंग के हैं, पीतांबर पहनते हैं, माथे पर मोर मुकुट, आंखों से तिरछी नजर से वो मुस्कुराते हुए दूसरों का चित्त लुभाते हैं, ये सब ये रूप आया। और गुण कैसे आए श्रीमद् भागवत में जैसे बड़े ने वर्णन किया गया है, हमारे गोस्वामी ने जैसा वर्णन किया उनके गुण, बड़े भक्त वत्सल अपने भक्तों के लिए सर्वस्वरूप परम करुण है, रसिक शेखर है, और जितने गुण है ना उन 16 प्रकार के वो सब उनमें समावेश। इसके बाद में गुण और उनकी लीलाएं स्वार्थ सखी रूप में दिखेंगे, पहले मंत्र उपासना मई के रूप में एक एक लीला, और फिर उनका चेन माला, पहले एक एक फूल और फिर वही गुथ करके स्वार्थ सखी के रूप में वो सब प्रकट, और उसके बाद में उनके लीला परिकर उनके साथ में है। इसको कहते हैं नाम श्रवण कीर्तन और स्मरण, ऐसे तीनों में समझना चाहिए। कहते हैं ये श्रवण कीर्तन और स्मरण तीनों के लिए ऐहिक एवं पारत्रिक पारलौकिक, ऐहिक माने इहलौकिक और पारत्रिक या पारलौकिक परलौकिक, परलौकिक माने एकदम गोलोक वृंदावन तक पहुंच गए, वहां तक लास्ट तक, और जितनी प्रकार की उपाधियां हैं लौकिक पारलौकिक सब कुछ त्याग करके, उपाधि माने जैसे नाम है ना तो नाम के साथ में उपाधि, कैसे रामचंद्र चौबे, ये चौबे क्या हुआ तो ब्रह्मचारी है, ये क्या है सन्यासी क्या है उपाधि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब उपाधि, लौकिक स्त्री उन सब ये सब भी उपाधि,
वर्ण आश्रम
जहां तक वर्ण और आश्रम से ये सब जहां संबंध है, परलोक में जैसे कि स्वर्ग में देवता देवता की उपाधि, इंद्र इत्यादि उपाधि, ब्रह्मा तक ब्रह्मा की उपाधि, ये सब दूर करके जितनी भी उपाधियां हैं, और किसी फल की इच्छा न रख करके लौकिक, किंतु भगवान की सेवा मुझे मिले राधा कृष्ण प्रसन्न हो ये रहेगी काम, ये सब जरूर है, केवल मात्र भगवान में ही मनोनिवेश करने का नाम नैष्कर्म है। नैष्कर्म किसको कहते हैं, किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का फल की आशा उसको नैष्कर्म कहते हैं, इसी को नैष्कर्म ही यहां पर भक्ति है। कहते हैं कि भक्ति नौ प्रकार की बतलाई जाने पर भी सबके लिए एक साथ में नौ प्रकार की भक्ति या 64 प्रकार की भक्ति संभव पर नहीं है, किंतु एक उसमें प्रधान होगा, बाकी वो कर सकता है, सभी अंगों का कर सकता है। और रागानुगा में अपने साधन के अनुकूल प्रतिकूल साधनों को नहीं करेगा। तो एक ही अंग के साधन से ही उसकी सर्वार्थ सिद्धि हो सकती है, क्योंकि एक ही के भक्ति वृत्ति एक है, एक वृत्ति होने पर भी उसकी कुछ कुछ धाराएं हैं, किंतु एक ही चीज है। किसी स्थल में यदि कहीं उसमें कोई मिश्रण देखा जाता है, एक आदमी कीर्तन प्रधान, कीर्तन प्रधान माने क्या, भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि का, यदि श्रोता यदि वक्ता है ना, ये बतलाएंगे, यदि कोई वक्ता है तो उस समय में सुनेंगे, हमसे श्रेष्ठ कोई वक्ता है तो सुनेंगे, और श्रोता है तो वो कीर्तन करेगा, और यदि कोई नहीं है तो क्या करेगा, हरे कृष्ण 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 स्मरण कीर्तन करेगा। इस प्रकार से होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के रुचि विशिष्ट व्यक्ति हैं, किसी के लिए एक उपयुक्त है कोई, किसी के लिए एक प्रकार। इसलिए समान भावे अर्थात सबके लिए एक ही प्रकार का निर्देश नहीं है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार में अपने अपने साधनों को वो करेंगे। किंतु नौगा भक्ति में ही जितने अंग हैं भक्ति के वो सब समाविष्ट हैं। नौदा भक्ति के अंदर में नौ भक्ति का करने से 64 प्रकार की भक्तियां, सहस्त्र प्रकार की भक्ति उसमें अंतर्भूत हो जाती है। किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं विशेष भावे यही नौटी भक्त्यांगेर कथाई किंतु करें इतना होने पर भी भक्ति के साधन में श्रवण का ही प्राधान्य समझना चाहिए। प्रभुपाद जी भी कहते पहली स्थिति में श्रवण नहीं ठीक से होगा तो कीर्तन भी ठीक से नहीं होगा, और कीर्तन नहीं होगा तो स्मरण भी नहीं होगा। इसलिए श्रवण पर इस साधन मार्ग में सबसे पहले श्रवण पर ही अधिक शुद्ध रूप से श्रवण होगा, भक्ति उसकी शुद्ध, नाम भी शुद्ध होगा, नाम के प्रति रुचि आएगी, आसक्ति आएगी। इसी तरह अब उन्होंने एक एक के विषय में अब वो बतला रहे। जी गोस्वामी अभिश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीकाओं पर आधारित होकर के, जिसमें कि जी गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में इस पर विचार किया, उसमें से थोड़े थोड़े विचार लेकर के आज हमने कितना हुआ,
साढ़े छः,
हाँ क्या बोल रहे हैं, एक घंटा से अधिक आज, कल एक एक को लेंगे। साधन ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए नाम का श्रवण कर सुनना ही अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध गुरु से शुद्ध कोई ऐसा पाठक हो, कीर्तन करने वाला हो, उसके मुख से नाम की महिमा का श्रवण करना ये पहले, इससे चित्त शुद्ध होगा और कैसे कीर्तन होता है उसके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जिस कीर्तन में या कीर्तन करने वाले के लिए एकादशी करना तो ठीक है, ये तो बात ठीक है, जो एकादशी को मानते हैं जो कीर्तन करते हैं, किंतु एकादशी करने में जो विधि है वो लड़कियों की शादी करना और एकादशी बराबर है, दोपहरी का सम्मान करना और भक्ति बराबर है, और ग गैये बछड़े की सेवा करना और भक्ति बराबर है, और ढोलक और मजीरा बजा लेना और भक्ति बराबर है, और कुंवारी लड़कियों की शादी कर देना और भक्ति बराबर है, जैसे कीर्तन में सुना ना, वैसा ज्ञान है उस कीर्तन के द्वारा परा जो भक्ति प्रेम है कृष्ण के चरणों में, ये कदापि लाख जन्मों में भी नहीं होगा। उसके द्वारा हो सकता है कुछ सुकृति हो, और उसके द्वारा फिर साधुओं का संग मिले, और साधुओं के संग में तत्व को जान करके ऐसे नामदित। इसलिए जिन लोगों की पूर्व पूर्व जन्मों में सुकृति है, वो लोग शुद्ध गुप्त का पदाश्रय करके दीक्षा इत्यादि लेकर के राधा कृष्ण की एकांती भक्ति में प्रवेश करते हैं। वो एकांतिक भक्त और साधारण लोग, चाहे जितना भी ताल स्वर से कीर्तन करने वाले हों, वो एक नहीं है। इसलिए राधा कृष्ण में एकांती भक्ति युक्त लोगों के यहाँ से नाम की महिमा सुनना आवश्यक। जो नाम का महिमा ही नहीं जानते हैं, वो लोग क्या कीर्तन करेंगे? यहाँ पर कीर्तन करना मैंने भगवान के लीला कथाओं का वर्णन करना, नाम की महिमा, साधुओं की महिमा, भगवान की महिमा, गोपियों की महिमा, ये सब चीजों को जानने वाले हैं, उसमें कोई साधारण लोग ये सब चीजों को नहीं जानते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाठ कर रहे हैं सप्ताह पाठ, और सप्ताह पाठ करने का फल बतलाते हैं कि तुम्हारी विपत्तियां दूर हो जाए, बस इतना ही, लड़की की शादी नहीं हो या फिर तुम्हारी लड़की की शादी हो जाए, जो जो कामनाएं हैं वो भागवत से पूरी हो जाएगी, यहां तक जानते हैं बस। ये भी बतला सकते हैं कि ये भागवत के सुनने से मुक्ति मिल जाएगी, बस इतना ही, और कोई कांड ज्ञान नहीं है। वो लोग भागवत का क्या पाठ करेंगे, खुद ही नहीं जानते हैं। इसलिए ऐसे भागवत को ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जिनको इन सब सिद्धांतों का ज्ञान है, और भगवान का खुद भजन करते हैं, भगवान की महिमा को जानते हैं, उनके मुख से ये सब सुनना चाहिए। इसलिए सबसे पहले नाम की महिमा बताने वाला व्यक्ति से सुनने से चित्त निर्मल होता है। चित्त निर्मल होता है माने क्या, चित्त में मैल जमी है, वो मैल है दूसरे प्रकार की, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त दूसरी प्रकार की कामनाएं वही यहाँ पर जमी हुई हैं, इन सब से वो उसको साफ कर देता है, इसका नाम है चित्त का निर्मल। भगवान की भक्ति के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं चाहता, ये चित्त का निर्मल होना है। राधा कृष्ण से बढ़कर के कोई परतत्व नहीं है, वही हमारे इष्ट देव हैं, इसके अतिरिक्त हमारे दूसरे इष्ट देव नहीं है। ऐसा चित्त को निर्मल कर देना ही नाम की महिमा। नाम की महिमा मैंने हमने दो तीन दिन बतलाई, जो 1000 विष्णु का नाम एक राम नाम के बराबर, और 3000 बार विष्णु का नाम 3 राम नाम के बराबर होगा, और वो बराबर होगा 1 कृष्ण नाम के। सब बराबर नाम नहीं है, सब में शक्ति बराबर नहीं है, नामों में भी तारतम्य है। जैसे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण हैं, और नृसिंह जी हैं या कल्कि जी हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों तो भगवत तत्व ही हैं, दोनों महिमा में बराबर नहीं होंगे, उसी तरह से नामों में भी सब नाम बराबर। इस चीज को समझना चाहिए, जगत के आदमी नहीं समझते। जब नाम श्रवण करने लग जाएंगे, नाम की महिमा श्रवण करते 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 रूप की महिमा हमारे कानों में आएगी, हम उसको समझ सकेंगे। जिसका हम नाम कर रहे हैं उनका रूप कैसे, जैसे कृष्ण है, यदि कृष्ण के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, तो फिर क्या हुआ, तो नारायण हो गए, कृष्ण नहीं हुआ। कृष्ण के हाथ में और कुछ नहीं है, चक्र ही है, तो फिर क्या है? वही द्वारका भी इत्यादि है। दो हाथ रहने पर भी हाथ में कौमुदी गदा है तो भी वही द्वारका भी, हाथ में बंसी होनी चाहिए, मोर मुकुट होना चाहिए, ब्रज का गोप वेश होना चाहिए, ऐसा होने पर तब वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, तब राधा जी के साथ में वो रह सकते हैं, अन्यथा वो राधा जी के साथ में। तो ऐसे रूप की महिमा हमारे कानों में आएगी। इस प्रकार से नाम और रूप की महिमा हृदय में उदित होने पर साधन करते 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 कृष्ण के गुण हमारे हृदय में स्फूर्ति होने लगे। हमने सुना है कि कृष्ण बड़े दयालु, हमने सुना है कि उपलब्धि है सुना है कि अभी प्रतीति नहीं है, हमें उपलब्धि नहीं, ये कृष्ण बड़े दयालु। यदि कृष्ण बड़े दयालु हैं ये भाव होता ना, तो एकांतिक रूप में उनके प्रति अनुरक्ति हो जाती, किंतु ऐसा होता नहीं है। ऐसा करते 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 कृष्ण के साथ में उनके परिकर जिस रूप में आप सुन रहे हैं, सुनाने वाला यदि वैसा है जो सत्य की बातें सुनाता है, कृष्ण के गोचारण की लीला और सब, उनके ये सब धारण करने की लीला ये सब सुनाता है, और हमारी रुचि उसमें है, तो वो एकांतिक रूप में राधा कृष्ण के नहीं तरफ जाकर के सत्य की तरफ में चला जाए। इसी तरह से जो जैसा है, जिसकी रुचि जैसी है, सुनते 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 वैसे ही परिकरों के प्रति और कृष्ण के प्रति रुचि होने लगती है, और वो सब लीलाएं प्रकट हृदय में होने लगती हैं। इसके बाद में नाम रूप गुण परिकर जितने हैं सब रूप से लीलाओं के साथ में उसमें हृदय में स्फूर्ति होने लगती है। पहले मंत्रमय होता है, इसके बाद में इसलिए ये साधन क्रम लिखा गया। नाम ही श्रेष्ठ है, किंतु नाम का श्रवण पाला होना चाहिए, फिर रूप का श्रवण, लीला का श्रवण, परिकार का श्रवण, इसके बाद में तब पूरा ये होगा। ऐसा श्रवण करने वाला व्यक्ति ही कीर्तन करने का अधिकारी हो सकता है, अन्यथा वो कीर्तन करने का अधिकारी। इसलिए कीर्तन और स्मरण का ये एक तारतम्य है, पहले ऐसा श्रवण तो फिर कीर्तन, और उसी का यहां पर स्मरण। यदि ऐसा नाम का महात्म श्रवण, नाम रूप लीला का श्रवण, यदि महत वैष्णवों के संग में हो, तब तो क्रिया होगी, चित्त निर्मल होगा और क्रमशः ये भाव उदित होंगे। और महत पुरुषों के संग में भी श्रवण करने पर उसको बेमन से सुनते हैं, धारण करने की दृष्टि से नहीं सुनते, इधर सुनते हैं इधर निकाल देते हैं, या सुनते हैं बेमन से, कुछ समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता तो प्रश्न भी नहीं करते, तो ऐसे सुनने से भी कुछ लाभ। इसलिए महत वैष्णवों के संग में उनके मुख से जो सुना जाए और उसमें श्रद्धा और प्रीति के साथ में यदि सुना जाए तो चित्त निर्मल होकर के रुचि उसमें प्रवेश कर जाएगी, तो उसको कहते हैं जात रुचि। जब तक रुचि नहीं होती तब तक वो नाम ठीक नहीं होता, रुचि युक्त नाम होना चाहिए। मन नहीं लग रहा है तो अभी नाम कर रहे हैं वो भी ठीक है, किंतु रुचि के साथ में यदि नाम होना तो नींद नहीं आएगी, आलस्य प्रमाद कुछ भी नहीं आएगा, और रुचि नहीं होगी तो नाम की माला उठाते ही नींद आ जाएगी, बहुत परिश्रम लगेगा। यदि वह महत्पुरुषों के द्वारा प्रकटित वो लीला कथा हो, महिमा हो, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, उसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी या रूप गोस्वामी कह रहे हैं, और फिर उसको भक्ति विनोद ठाकुर जी उपमा दे करके बतला रहे हैं, और उसको हमारे गुरु जी या ऐसे लोग यदि कह रहे हैं उसकी महिमा अधिक होगी। हाँ, ऐसा। और अपने मन से हम कह रहे हैं जे एक पीसी माँ थी। हाँ, पीसी माँ,
क्या नाम? नाम नहीं,
नाम नहीं, पीसी माँ। तो वो पीसी माँ क्या करती थी, गौरनी ताई की पूजा करती थी, उसके बिना रह नहीं सकती, उनके बिना एक मिनट नहीं रह, जहाँ जाती थी वो गौरनी ताई को लेती जाती। एक दिन वो पूजा ठीक से नहीं कर सकी तो ठाकुर जी कहने लगे आ करके, ये तुमने हमारी पूजा नहीं की, आज मुझको बड़ी भूख लगी है, तुमने कुछ खिलाया नहीं, खाया नहीं, तो इसको किस। अब इस पर वो एकदम रोने लगी, और फिर उनको रसोई बना करके उनको खिलाई, तब वो जाकर के संतुष्ट हुए। ये कहानी तो रोचक दिखती है, किंतु सुखदेव गोस्वामी ने इस कहानी को कहा है, न कि रूप गोस्वामी ने कहा, न कि इसको अनुमोदन भक्ति ठाकुर जी ने किया, न कि उसके हमारे गुरुवर्गों ने किया। यदि नहीं किया तो इस कहानी से भी कुछ लाभ नहीं मिलता, और महापुरुषों के द्वारा कही हुई और उनके दे अनुमोदन यदि कथाएं हैं, जैसे गंगा माता ठाकुरानी, जन्नमा जी, और महिलाओं में और पुरुषों में तो